कॉरिडोर में खड़ी शकुंतला और रम्या अभी विशाल को ही देख रही थीं। दोनों सोच ही रही थीं कि उसके पास जाकर पूछें कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी अचानक सामने से एक लड़की तेजी से आई। उसने आते ही विशाल को पीछे से आवाज़ दी, विशाल। विशाल ने मुड़कर देखा। अगले ही पल वो लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बिना झिझक उसे गले लगा लिया। रम्या की आँखें गोल हो गईं, शकुंतला भी कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गईं। वो लड़की थी शिवानी। शिवानी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो किसी अच्छी खबर से बेहद खुश थी। थैंक यू सो मच विशाल, उसने उत्साह में कहा। विशाल भी हल्के से मुस्करा रहा था, उसके चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों कुछ देर तक बात करते रहे, फिर शिवानी ने हंसते हुए कुछ कहा और दोनों साथ साथ कॉरिडोर से बाहर की तरफ बढ़ गए। कुछ ही पलों में वे दोनों नज़रों से ओझल हो गए। कॉरिडोर में अब फिर वही हलचल थी, लेकिन शकुंतला और रम्या वहीं खड़ी रह गईं। रम्या ने धीरे से अपनी माँ की तरफ देखा। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, ओ नो, उसने मन ही मन सोचा, भैया तो बड़ी मुश्किल में आ गए हैं, आज घर में तूफान आ जाएगा। उसने फिर सोचा, पता नहीं वो लड़की कौन थी। रम्या थोड़ा घबरा गई। उधर शकुंतला के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, उसकी आंखें सख्त हो गई थीं। वो बिना कुछ बोले तेजी से बाहर की तरफ चल पड़ी। माँ, रम्या जल्दी से उसके पीछे भागी। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गईं। बाहर उनकी कार खड़ी थी। शकुंतला तेज कदमों से कार में जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अब साफ गुस्सा था। रम्या धीरे से उसके पास बैठ गई। कार के अंदर कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर शकुंतला ने अपना मोबाइल निकाला। उसने तुरंत विशाल का नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद कॉल उठी। हेलो माँ, उधर से विशाल की आवाज़ आई। शकुंतला की आवाज़ सख्त थी। कहाँ हो तुम? विशाल ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं कॉलेज में हूँ। बस ये सुनते ही शकुंतला का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो समझ चुकी थी कि विशाल झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने फ़ोन पर कुछ नहीं कहा, बस ठंडी आवाज़ में बोली, अच्छा ठीक है, और उसने फ़ोन काट दिया। रम्या धीरे से माँ का चेहरा देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि मामला बिगड़ चुका है। शकुंतला ने गुस्से में कहा, तुम्हारा भाई बिगड़ चुका है। रम्या चुप रही। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। कार चल पड़ी। कुछ मिनट तक कार में सन्नाटा रहा, फिर अचानक शकुंतला ने ड्राइवर से कहा, रमेश कार बाजार की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने रियर मिरर से देखा, जी मैडम, कुछ खरीदारी करनी है। कार शहर के भीड़भाड़ वाले बाजार की तरफ मुड़ गई। करीब 20 मिनट बाद कार एक बड़े शॉपिंग एरिया के सामने रुक गई। यहाँ कई कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें थीं। शकुंतला कार से उतरी, रम्या भी उसके साथ उतर गई। दोनों एक बड़ी साड़ी की दुकान में अंदर चली गईं। दुकान बहुत बड़ी थी, चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियाँ सजी हुई थीं। सेल्समैन ग्राहकों को साड़ियाँ दिखा रहे थे। शकुंतला अंदर बढ़ ही रही थी कि अचानक वो सामने से आते एक आदमी से टकरा गई। दोनों के हाथ से सामान थोड़ा हिल गया। ओह सॉरी, उस आदमी ने तुरंत कहा। शकुंतला ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, और उसी पल उस आदमी की नज़र भी शकुंतला पर टिक गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे अचानक किसी पुराने चेहरे से सामना हो गया हो। रम्या भी आश्चर्य से उस आदमी को देखने लगी। दुकान की हलचल के बीच वो पल जैसे अचानक ठहर गया। साड़ी की दुकान के अंदर कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया था। शकुंतला और सामने खड़ा आदमी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो आदमी कोई और नहीं था, वीरेंद्र, शकुंतला का पति। रम्या ने जैसे ही उसे पहचाना, उसकी आंखें चमक उठीं। उसके होठों से धीरे से निकला, उसका चेहरा अचानक खिल गया। काफी समय हो गया था उसे अपने पिता को देखे हुए। वो खुश होकर तुरंत उनकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि शकुंतला की तेज नज़र उस पर पड़ी। उसने हल्का सा घूरकर रम्या को देखा। रम्या तुरंत रुक गई। वो समझ गई कि माँ अभी गुस्से में है। उधर वीरेंद्र की आंखों में भी हल्की चमक आ गई थी, शायद उसने भी रम्या की आवाज़ सुन ली थी। उसने धीरे से कहा, रम्या, लेकिन उसकी नज़र फिर शकुंतला पर टिक गई। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही, फिर वीरेंद्र ने धीमी आवाज़ में कहा, शकुंतला लौट आओ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो बहुत समय से यही बात कहना चाहता हो। शकुंतला के चेहरे पर तुरंत सख्ती आ गई। उसने बिना झिझक कहा, देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ और कठोर थी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। दुकान में आसपास लोग साड़ियाँ देख रहे थे, लेकिन इस कोने में खड़े तीनों के बीच का माहौल अलग ही था। वीरेंद्र ने शांत रहने की कोशिश की, क्यों शकुंतला? उसने धीमे से पूछा। शकुंतला की आंखों में हल्का दर्द उभरा, लेकिन वो तुरंत गुस्से में बदल गया। क्योंकि उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, उसने साफ शब्दों में कहा। वीरेंद्र चुप हो गया। शकुंतला बोलती चली गई, मुंह पर सब अच्छे बन जाते हैं। उसकी आवाज़ भारी हो गई, लेकिन मन में कड़वाहट चलती रहती है। उसने सीधे वीरेंद्र की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अब वहां वापस नहीं जाऊंगी, जहां मुझे हर वक्त ये महसूस कराया जाए कि मैं उस घर की नहीं हूं। रम्या चुपचाप दोनों को देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसके माँ बाप अलग रहने लगे। दुकान की रोशनी में वीरेंद्र का चेहरा थोड़ा उदास दिखाई दे रहा था। उसने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, जैसे वो शब्द ढूंढ रहा हो, लेकिन शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसने धीरे से नज़र रम्या की तरफ घुमाई। उसकी आंखों में तुरंत नरमी आ गई। वो थोड़ा झुका और प्यार से रम्या के सिर पर हाथ फेर दिया। कैसी हो बेटा? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। रम्या की आंखें थोड़ी भर आईं। ठीक हूँ पापा, वो धीरे से बोली। वीरेंद्र हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने कहा, माँ का ख्याल रखना। कुछ पल रुककर उसने फिर कहा, और अगर हो सके तो अपनी माँ को समझाना। रम्या ने धीरे से शकुंतला की तरफ देखा, लेकिन शकुंतला का चेहरा अभी भी सख्त था। वीरेंद्र समझ गया कि अभी बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ और कहे सीधा खड़ा हो गया। उसकी नज़र आखिरी बार शकुंतला पर पड़ी। उस नज़र में शिकायत भी थी और कहीं गहराई में एक अधूरापन भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और धीरे धीरे दुकान के बाहर की तरफ चल पड़ा। रम्या उसे जाते हुए देखती रही। उसका मन कर रहा था कि दौड़कर पापा को पकड़ ले, लेकिन वो वहीं खड़ी रह गई। कुछ ही पलों में वीरेंद्र भीड़ में गुम हो गया। दुकान में फिर से वही सामान्य हलचल लौट आई, लेकिन रम्या का दिल भारी हो गया था। उसने धीरे से अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शकुंतला ने तुरंत दूसरी तरफ देखते हुए कहा, चलो। उसकी आवाज़ में अभी भी कठोरता थी। रम्या चुप हो गई। दोनों धीरे धीरे दुकान के अंदर आगे बढ़ने लगी, लेकिन रम्या के मन में अभी भी वही सवाल घूम रहा था, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब माँ और पापा फिर से एक साथ होंगे।